آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
भाषाओं पर हुए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि आप्रवासियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी अपनी मातृभाषाओं को भूलती जा रही है, जिसका असर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर होगा। अध्ययन में सवाल उठाया गया है कि भाषाओं की कीमत क्या है। एमी हॉल की रिपोर्ट विवेक आसरी की आवाज में। श्यामला ईश्वरन की माँ हिंदी भाषी हैं और पिता तमिल भाषी, लेकिन वो ये दोनों ही भाषाएं नहीं बोलती। सिडनी में रहने वाली श्यामला को इस बात पर कम सवाल नहीं झेलने पड़ते।
It's the Indian community that, you know, I get the most questions from because it's a bit of a shock for them, like, oh wow, like, why don't you know, why didn't your parents teach you? And it's hard because I can't explain why my parents didn't teach me. And to be very frank, it's still a very sensitive issue within the household. They still to this day think that they did what they thought was best at the time, which I'm sure they did.
ऑस्ट्रेलिया में जन्मी श्यामला आप्रवासियों की उस पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जो अपनी मातृभाषा खो चुके हैं। मैक्वारी यूनिवर्सिटी के मल्टीलिंगुअलिज्म रिसर्च ग्रुप और न्यू साउथ वेल्स फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स ने एक संयुक्त अध्ययन किया है जिसे नाम दिया गया है What are languages worth? Community languages for the future of New South Wales. यानी भाषाओं की कीमत क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि यदि सामुदायिक भाषाओं को सहारा नहीं दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया को बहुसांस्कृतिक बहुभाषाई समाज होने के जो आर्थिक और सामाजिक फायदे मिल सकते हैं उनमें कमी आएगी। रिपोर्ट कहती है कि सामुदायिक भाषाओं को और ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा खतरा इस बात से है कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भाषाएं नहीं पहुंच रही हैं। रिपोर्ट की सह लेखक डॉक्टर एलिस चिक कहती हैं कि विभिन्न समुदाय अपनी अपनी भाषाओं के रखरखाव को लेकर अलग अलग रवैया दिखा रहे हैं।
If we are looking at groups that have much higher rate of maintaining their language in the third generation, so we are looking at the Greek, for example, that about 30% of the third generation say that they can speak their own language and English well. And we are looking at the census data. And then, for example, Macedonian, 38% say that they speak their own language and English well. And also Vietnamese, 46%.
डॉक्टर चिक कहती हैं कि जर्मन समुदाय में तीसरी पीढ़ी तक भाषा को संभाल कर रखने की दर सबसे कम 1.5% है।
For Chinese, 68% of the second generation say that they can speak their own language and English well, but only 4.4% in the third generation. So we can see that in one generation, we practically lost Chinese. This is the same for Japanese. The 60% of second generation Japanese Australian say that they speak Japanese and English, but only 5% in the third generation. So this is quite alarming.
New South Wales Federation of Community Language Schools की अध्यक्ष लुसिया जोन्स कहती हैं कि इस रिपोर्ट के नतीजे उन्हें हैरान नहीं करते। सुश्री जोन्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं सीखने को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। न्यू साउथ वेल्स की शिक्षा व्यवस्था का वो खास तौर पर जिक्र करती हैं।
Some schools can't have them in their language anymore because if you don't have a certain number, number of students, you're not going to be eligible to have HSC. Like you have to have minimum 15 students, but if you have 14, you're not eligible. Even if you say that now we are going in a few years' time, the numbers are going to go up again.
डॉक्टर एलिस चिक भी इस बात से सहमति जताती हैं।
We only mandate students to learn 100 hours of languages in years 7 or 8, and that's it. And so there's no strong encouragement within the education system to encourage our children to start learning at home, continue in primary school, and continue in secondary and tertiary education.
हालांकि डॉक्टर चिक मानती हैं कि न्यू साउथ वेल्स में भाषाएं सीखने को लेकर मानक विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया से नीचे हैं, लेकिन वो कहती हैं कि भाषाओं का क्षय पूरे देश में हो रहा है। डॉक्टर चिक की चेतावनी है कि इस क्षय का असर आर्थिक भी होगा।
There are two main ways. So first of all, the contributions of employees' multilingual skills to businesses so that they can trade globally, and then also through the contributions of language-related industries. So for example, I will trust Google Translate if I need to read a food label, right? But I may not trust Google Translate with a contract, a business contract.
और जाहिर है, इससे सामाजिक सौहार्द तो बढ़ता ही है.
The value of bilingualism to individual is huge. It enhances educational achievement and well-being. And then, of course, the value of language maintenance is very important for the integration of community language group.
Lucia Jones कहती हैं कि रिपोर्ट का एक ही सबक है. सरकार और शिक्षा व्यवस्था भाषाओं को ज्यादा अहमियत दे.
Language is as important as math and science. It's very important. Not everybody will be the talented in the science. A lot of people are going to have talent for the other areas, and you have to recognize diplomacy. It's essentially you speak another language.
हमने इस बारे में न्यू साउथ वेल्स के शिक्षा मंत्री से संपर्क साधा है और उनकी टिप्पणी का इंतजार है.
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.